संबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्व प्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। श्री भूतबलि भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में दूसरा जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 58 पर आ गए। 58 बंध के काल की प्ररूपना चल रही है। एक जीव लगातार बंध करता रहे तो कितने काल तक करता है, जघन्य से और उत्कृष्ट से। उसमें जघन्य की प्ररूपना चल रही थी अपनी, जघन्य बंध की, और उसको मार्गणाओं में देखते हुए अभी हम लेशा मार्गणा की बात देखने शुरू करने वाले हैं। यहाँ 58 पृष्ठ पर जो 94 नंबर का जो पैराग्राफ है वहां से पढ़ेंगे। कृष्ण नील और कापोतलेशा में काल अपने उत्कृष्ट के समान है, अपने उत्कृष्ट के नहीं, उत्कृष्ट बंध के समान है। जघन्य बंध एक समय और अंतर में। तो कृष्ण नील कपोत में जघन्य किसके हो गए? एक ही नील। पीत और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। क्या हुआ? और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। पीत और पद्मलेशा में कैसे समझना? सातवें गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध लेंगे हम। फिर क्या हुआ? लेशा पलट जाएगी ना उसकी, जो कुछ है पीत पद्म में से। इसलिए एक समय घटित होता है ना, एक समय जगन्य एक समय। ये तो हमने देखा था समय दृष्टि है, जहाँ वो तो बंध काल जो लगातार उतना चलता है अंतर्मुहूर्त तक, वो यहाँ क्यों नहीं लिया? लेशा पीत से पद्म हो गई, पद्म से शुक्ल हो गई, तो एक समय घटित हो सकता है। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि लेशा का काल अंतर्मुहूर्त है इसलिए। तथा उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक दो सागर और साधिक 18 सागर है। साधिक दो सागर पीतलेशा के लिए और साधिक 18 सागर पद्मलेशा के लिए। शुक्ल लेशा में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। ये कहां पर होगा? श्रेणी तो आठवें से चढ़ते हैं, तो यहाँ उत्कृष्ट कब ये उसका जघन्य स्थितिबंध कब होगा? दसवें के अंत में और नौवें के अंत में मोहनीय। तो हमने देखा था वो उसका तो अंतर्मुहूर्त काल रहेगा, और जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। क्योंकि 33 सागर में जो देवों में जाने वाला जीव है, जाने से पहले एक अंतर्मुहूर्त शुक्ल लेशा होगी और उसी लेशा में वो यहाँ जन्म एक अंदर मूर्ति तक वही लेशा रहेगी, इसलिए साधिक कह दिया। श्रेणी तो शुक्ल लेशा में ही चढ़ी जाती
है।
किसकी बात कर रहे
शुक्ल
श्रेणी चढ़े तो भी उसका जघन्य कब होगा, और जघन्य का अंतर्मूल कभी भी हो सकता है। छठे की क्या जरूरत है, पहले गुणस्थान में अजगन्य नहीं होगा, अनादि से अजगन्य हो रहा है, अभी उसका अंतर्मूर्त क्यों कहा, क्योंकि लेशा पलट गई। लेशा में शुक्ल लेशा का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, तो जब तक वो जगन्य दसवें में नहीं पहुंचा है, कहीं पर भी शुक्ल लेशा में जो रहने का काल है उसको ले लेना। या यानी आप उपशम श्रेणी में फिर चढ़ाने की क्या जरूरत है, पहले सातवें में पीत पद में था, शुक्ल होकर उपशम श्रेणी चढ़ा और अबंधक हो गया, फिर भी अंतर्मूर्त तो वहां घटित होता ही है। उपशम सम्यक दृष्टियों में आगे बढ़ेंगे। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आप कहेंगे ये जघन्य काल एक समय कैसे हुआ, यानी उपशम समय दृष्टि द्वितीय उपशम वाला अबंधक था ग्यारहवें में, बंद चालू किया और फिर नहीं, परंतु देव जगन्य स्थिति बंद की बात नहीं, नहीं नहीं जगन्य की बात है, वहां जगन्य ही नहीं, उसका जगन्य है। उपशम समय दृष्टियों में सात कर्मों के जगन्य स्थिति बंद का उनके लिए जगन्य कब होगा ये बात है।
वो श्रेणी नहीं है,
मार्गणा जगन्य, मार्गणा जगन्य कब होगा, चढ़ते समय होगा, चढ़ते समय
होगा,
अंतिम स्थिति बंध में पहुंचा और एक समय में मरना, चढ़ते समय दसवें के अंत में, पूरा अंतर्मूर्त नहीं रुका ना, यानी अंतिम स्थिति बंध शुरू हुआ और एक समय में मरण हुआ, यानी उपशम श्रेणी चढ़ते हुए। दसवें के अंतिम स्थिति बंध में एक समय रहा,
अंतिम समय
किसका अंतिम समय, हाँ वो कहते समय तो अंतिम समय कह देंगे, परंतु अंतिम अंतर्मूर्त में उतना ही तो उतना रहेगा। और उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यही बात घटी थी, जघन्य का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त तो उतना का उतना रहा, उपशम की अपेक्षा जघन्य दसवें के अंत में अंतर्मूर्त लगातार उसका जो स्थितिबंध का काल होगा वही, अजगन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उपशम समय दृष्टि रहते हुए उनके लिए अजगन्य कब है, जब वो अंत के स्थितिबंध में नहीं पहुंचा है तब तक, तो उपशम सम्यक तो का काल कितना है, तो अंतर्मूर्त तो वो ले लेना है।
उपशम सम्यक ने छोटा,
हाँ तो आप जो यथायोग्य जघन्य में जघन्य काल ले लो, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट काल ले लो, अंतर्मूर्त हो जाता है, यानी अजगन्य का अंतर्मूर्त घटित होगा। साधन समय दृष्टियों में उन्होंने ये कहा प्रथमोपशम का काल बड़ा है, द्वितीयोपशम का काल छोटा है, साधन समय दृष्टियों में आठ कर्मों का और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में सात कर्मों का काल उत्कृष्ट के समान है। ये तो एक समय शासन का एक समय घटित होता है, उत्कृष्ट इच्छावली है, फिर भी जगन्य का अंतर्मूर्त कह देंगे एक समय और अंतर। इसमें शासन के लिए जगन्य कब होगा? शासन में आते ही
तो एक समय
एक समय के लिए आया,
एक समय के लिए शासन में
वो एक समय के लिए आएगा, उसका अपना जगन्य होगा जो छह अवधि में आता है, जब समान होगा छह अवधि में उसके लिए आएगा और उसका पहले समय में जो जगन्य होगा, और एक समय के लिए जो शासन में आता है दोनों जगह जगन्य होगा।
स्वामित्व निकाल कभी भी पहले समय में ही होगा ना, उसके 46 ये जो 66 के बीच में शासन सम्यक्त्व में मिला क्या? ऊपर से सातवें आठवें लगे सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर चार गति का जीव सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति बंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है, अथवा संयम से गिरकर जो छठे से गिरकर जो हुआ है अभी वो उत्कृष्ट में उसके कितना काल है वो दिया था हमने, उत्कृष्ट काल प्ररूपणा में शासन को जो लिया था एक समय से छह अवली होगा ना, ये बात 53 पर है वैदक समय दृष्टि, क्षयिक समय दृष्टि, उपचम समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, हाँ शासन में नीचे से तीसरी लाइन 79 पॉइंट की सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर में, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह अवली,
छावली जो है ये बड़ा अंतर मोड है।
अब उसको यथा योग्य समय क्योंकि आवली आवली प्लस वन समय मिनिमम अंतर्मूर्त होता है, जगन युक्त संख्या समय होगी एक आवली प्लस एक समय, वो छोटे में छोटा अंतर्मूर्त है।
तो समझिए अंतर्मूर्त और छावली तो कौन बड़ा है?
अंतर्मूर्त छोटा है,
अंतर छोटा है,
अंतर्मूर्त छोटा हो सकता है उसका
एक आवली जघन्य युक्त संख्या जो संख्या है
समय
समय प्लस वन समय इज इक्वल टू एक आवली। आपके पास कितनी आवली है?
नहीं एक अंतर्मूर्त,
एक अंतर्मूर्त है। आपके पास कितनी आवली है?
संख्या आवली
छह है, छह सात अंतर्मूर्त तो वो बड़ा होगा ना, तो एक अंतर्मूर्त बड़ा होगा।
यानी वो कौन सा अंतर्मूर्त है ये यहाँ लिखा नहीं है, अल्प बहुत्व में अगर बताते हैं कि कौन सा काल बड़ा है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि छियावली को भी अंतर्मूर्त कह सकते हैं। हाँ यानी वो तो मैक्सिमम बता दिया उन्होंने, छियावली उसका जो शासन का मैक्सिमम काल है वही वहाँ बता दिया मार्गणा, ये हो गया। ये आठों कर्म के लिए वही बात बताई, आयु में भी वही बात आई थी ना, ओग के समान बताया था।
आयु की बात नहीं करते,
एक समय के लिए उत्कृष्ट हो सकता है, वैसे एक समय के लिए जगन्य हो सकता है, क्योंकि नहीं आयु बंधने के पहले समय में
उत्कृष्ट
उसका उत्कृष्ट होता है तो अंतिम में जगन्य होगा। संगियों में संगी मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान काल है और असंगियों में सामान्य तिर्यंचों के समान काल है। अभी संगी कहेंगे तो जो शपक श्रेणी में होता है वही घटित होगा। और संगी में अजगन्य का काल कितना होगा उत्कृष्ट और जगन्य का?
अजगन्य का काल सिद्धि लेनी पड़ेगी।
अजगन्य का जगन्य काल बताओ। अजगन्य का जगन्य काल,
अजगन्य का
जगन्य काल,
संगी में पूछ रहे ना,
संगी में अजगन्य का जगन्य काल
संगी से जाया हुआ
है। एक समय कैसे? संगी में तो क्षपक में होता है जगन्य, बाकी सब अजगन्य है। अंत श्रेणी से उतरते समय अंतर्मुख होता। अब अजगन्य का बड़ा काल शतक तो शतक सौ पृथक, शतक पृथक यानी सौ पृथक तो सागर। देखो संगी में तो क्षपक श्रेणी भी होती है, तो जगन्य का कितना होगा? जगन्य बंध का अंतर्मूर्त होगा, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। अजगन्य का कितना होगा? तो जगन्य काल, अजगन्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि श्रेणी उतरते समय श्रेणी उतर कर फिर चढ़ा, जगन्य का स्वामित्व तो क्षपक है, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूल, और अजगन्य जगन्य अंतर्मूल श्रेणी उतरते समय, क्योंकि अनादि से अजगन्य था ना, उतरकर फिर चढ़ा इसलिए। और फिर उत्कृष्ट कितना है अजगन्य का, ये बात चल रही थी। हाँ तो संगी में रहने का मार्गणा का उत्कृष्ट काल तो वो कितना हुआ? पृथक्त्व सौ सागर, सौ कहो या शतक कहो, या शत पृथक्त्व सागर कहो। पंचेंद्रिय का, पंचेंद्रिय
ये संगी
का, और असंगियों में सामान्य त्रिरेंचों के समान काल है। असंगी तो एक इंद्रिय भी आ गए तो अभी बताओ त्रिरेंचों में बता, ये असंगी में बता दो किसका जगन्य कब होगा, असंगियों में जगन्य किसके होगा? बादर पर्याप्त एक इंद्रियों के होगा तो उसका जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुख हो गया। अब अजगन्य का जगन्य काल, जगन्य काल अंतर्मूर्त होगा ना, तीन किस में लेना है? अच्छा असंगी में ले रहे आप, जगन्य के बाद अजगन्य किया और मरकर संगी में गया, एक समय हो गया। और असंख्यात लोग
जगन्य करके मतलब वो संगी में आ गया,
पहले उसने जगह मिनिमम किया बादर पर्याप्तन में, फिर अजगन्य किया और संगी में उत्पन्न हुआ मर्क। उत्कृष्ट काल मनुष्य क्यों तीरियंज में संगी हो सकता है? उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग,
असंख्यात लोग जो सबसे
ज्यादा है, असंगी में, असंगी में रहते हुए उसने लगातार अजगन्य अजगन्य किया तो कितने काल तक करेगा? हाँ तो असंख्यात, असंख्यात। अब आगे आहारकों में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये कब हुआ? शांति रखो जरा, अन्य लोगों को सोचने दो, सुन लिया? कब होता है, कौन सी श्रेणी? उसको क्या कहते? हाँ मंजू, उपशम श्रेणी में जगन्य हुआ कि क्षपक में हुआ? क्यों? बहुत अच्छा, विशुद्धि ज्यादा है ना वहाँ, तो वहाँ हो गया। हाँ वो तो जाहिर है, जैसे हमने अन्य में देखा था शपक श्रेणी में, दसवें में छह का और नवे में एक मुनि का, अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय आहारकों में, अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, मंजू ये बताएंगे आप उतरते हुए क्या हुआ, मरण हुआ और देव में गया तो क्या हुआ, बहुत अच्छा, विग्रह गति आहारक से अनाहारक हुआ, ख्याल में नहीं बात, तो एक समय घटित होगा, यानी उपशम श्रेणी उतर कर एक समय का बंद किया है और मरकर अनाहारक हुआ, अब उत्कृष्ट काल, वह जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग में, ये तो हमने देखा था आहार लगातार आहारक रहने का काल उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात, ये मार्गणा का ही काल ले लिया है। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे, 59 पृष्ठ पर आए हम अभी, इस प्रकरण में जहां जो विशेषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कराए हैं। साधारणतः सर्वत्र अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है और जहां भवस्थिति ही काय स्थिति है वहां तत् प्रमाण होता है, ये भवस्थिति ही काय स्थिति होता है इसे कहां कहां बन सकता है, जो भवस्थिति ही काय स्थिति है ऐसा कब होगा, सभी में होगा, देव में और नारकी में एक ही भव है ना उनका, लगातार आने भव नहीं हो सकते, काय स्थिति किसको कहते हैं, लगातार उसी पर्याय में जन्मने का लंबा काल उसको काय स्थिति कहेंगे, और एक ही भव की जो स्थिति है आयु उसको भवस्थिति कहेंगे, जैसे मनुष्य की भवस्थिति कितनी है उत्कृष्ट, बोलो 3 पद, और उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी है मनुष्य, 45, यानी वो पूर्व कोटि पृथक प्लस 3 पल्ले जो कहते हैं हम, जैसे लिए हमने 3 वेदों में जन्मा, 8, 8, 12, 24, एक अपर्याप्त का भी, और फिर 24 करना है तो उसमें से एक कम किया तो 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले, हेलमेट, ये उसको क्या कहेंगे, काय स्थिति, काय स्थिति किसको कहना और भव स्थिति किसको कहना, ये बात चल रही है, काय स्थिति ने लगातार उसमें रहने का काल, तो जहां भव स्थिति ही काय स्थिति है वहां तत् प्रमाण प्राप्त होता है, जैसे नारकियों की बात है तो हमने 33 सागर कहा था, अजघन्य का उत्कृष्ट काल 33 सागर का, क्योंकि वही उसकी बहुस्थिति है, वही उसकी काय स्थिति है, बहुत सी ऐसी भी मार्गणाएं हैं जिनमें बहुस्थिति और काय स्थिति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, जैसे अभी आहारक की बात है, कौन सा भव लेना और कौन सी काय लेना, तो लगातार आहारक 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 रहा, बीच में कारमान का योग हुआ ही नहीं, रुजु गति से ही मरकर जाता रहा अन्य गति में, तो उसको हम आहार मार्गणा का काल कहें, वहां भव सिद्धि या काय सिद्धि की बात नहीं है, वहां मार्गणा की बात है, शासाधन में मार्गणा का काल गिरना, हाँ तो यहाँ किसी भव की या काय की बात नहीं है, तो ऐसी मार्गणा की जिनमें भव सिद्धि और काय सिद्धि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, इसलिए वहां उस मार्गणा का जो उत्कृष्ट काल हो तत्प्रमाण अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कहना चाहिए, इसमें हमने आहार आहार मार्गणा देखी, उपशम समय अभी लेशा में देखा, क्रोधमान में देखा, वेदक समय तो उपशम समय तो जो कोई है, जैसे हमने शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट देखा तो साधिक 33 सागर, वो शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल देखा, मात्र कुछ मार्गणाएं इस नियम का अपवाद है। जैसे मति अज्ञानी कितने काल तक रह सकता है, तो लंबे काल तक। हाँ, तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ऐसा क्यों लिया? क्यों? तो मति अज्ञान का क्या हो? पंचेंद्रिय में आए तो मति अज्ञान मिटा कहाँ? समय तो ये हो जाए और बाद में मति अज्ञान हो जाए तो अर्धा पुद्गल परावर्तन होगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अजगन्य उसका जगन्य कब होगा? संगी में होगा, पंचेंद्रिय में होगा, जब शपक्षणी चढ़ेगा। और जगन्य के लिए उसको हम वैसे तो उत्कृष्ट में ये घटित होता है, अभी जगन्य के लिए घटित नहीं होगा। नहीं समझे? अनुत्कृष्ट के लिए जो घटित होगा, अजगन्य के लिए नहीं।
अनुत्कृष्ट के लिए
यहाँ कहाँ लिखा? ये अजगन्य अजगन्य की बात चल रही है?
मेरे ख्याल से अनुत्कृष्ट की बात कर रहे
हैं। कहाँ? ऊपर शुरू, ऊपर के दूसरी बार, दूसरी लाइन, सर्वत्र अजगन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल। अनुत्कृष्ट का कहते तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह सकते थे, परंतु अजगन्य के लिए मति अज्ञान के मार्गणा का काल कितना होगा? या तो अनादि अनंत होगा या शादी शांत होगा। शादी शांत होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्यों लिखा?
उत्कृष्ट ले ना, अनादि अनंत और शादी शांत में एक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन,
असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित करो, घटित करो। तो एक इंद्रिय का कहाँ प्रश्न है? मति अज्ञानी मार्गणा चल रही है, क्यों
नहीं?
अनादि से मति अज्ञानी है तो अनादि शांत हो सकता है उसको, या अनादि अनंत हो सकता है। हाँ, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी एकेंद्रिय जीव ऐसा लेना। हाँ, उत्कृष्ट काल में एकेंद्रिय का उत्कृष्ट काल कह सकते हम। मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान में एकेंद्रिय का, क्योंकि मति अज्ञान में जघन्य कौन करता है? तो कहते पादर एकेंद्रिय कहता है। और एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। पर इनमें अजगन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है, सो इसका खुलासा सामान्य तिरेंचों के समान जान लेना चाहिए। इन्हें एकेंद्रिय में भले इतने काल रहे, परंतु उसमें हाँ, जैसे हमने उत्कृष्ट का जो अंतर यानी अनुत्कृष्ट का काल असंख्यात लोक प्रमाण देखा था, वैसे अजगन्य का भी काल असंख्यात लोक प्रमाण सिद्ध होता है, क्योंकि वो कौन करेगा जघन्य या उत्कृष्ट? तो कहते बादर पर्याप्त करेगा, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त। अब ये सूक्ष्म में चला गया तो उसने जघन्य किया ही नहीं, अजगन्य ही रहा लंबे काल तक, ये घटित होगा। तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कर्मों के जघन्य स्थितिबंध के जघन्य और उत्कृष्ट काल का तथा अजगन्य स्थिति बंध के जगन्य काल का खुलासा भोग प्ररूपणा को और बंध स्वामित्व को देखकर कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष कहना है कि यहाँ सर्वत्र आयु कर्म के जगन्य और अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल नहीं कहा है, सो इसका कारण यह है जहाँ आयु कर्म का बंध संभव है वहाँ आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है इसका कहीं भी निर्देश नहीं किया है। ये जो एक समय होगा जघन्य स्थितिबंध का तो आयु बंध के अंत में, अंतिम समय में,
के अंतिम समय
लगातार अंतर मुहूर्त तक आयु का बंध होता है
कोई भी अपकर्ष,
तो उसका किसी भी अपकर्ष काल में शुरू में उसका उत्कृष्ट है और वो घटता चला जाता है, अंतिम समय में जगन्य होगा। इस प्रकार बंध काल समाप्त हुआ। अभी अंतर की बात चलेगी।
नहीं, एक जीव आठों अपकर्ष में आयु बांध रहा है तो उसके अंत उत्कर्ष तो पहली बार पहले अपकर्ष में बांधेगा उसके पहले समय में होगा।
हाँ,
लेकिन जगत में जो है वो आठों अपकर्ष के अंत में बराबर होगा।
वो एक अपकर्ष में ये है, अभी आठों में मिलकर ये उत्कृष्ट जगत ने लगाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। मार्गणा में तो अलग हो जाएगा। अब अंतर प्ररूपणा देखेंगे हम, अभी थोड़ा अलग से सोचना है ना। ये नंबर 14 यहाँ 24 जो प्ररूपणा हम अनुयोग द्वारा देखे थे उसमें से नंबर 14, क्योंकि पहले 11 होने के बाद हमने स्वामित्व देखा, काल देखा, अब अंतर देख रहे। बंध का अंतर काल दो प्रकार का है। जब बंध का अंतर कहेंगे तो जघन्य बंध का अंतर और उत्कृष्ट बंध का अंतर, उसमें भी जो अंतर है वो कम से कम कितना हो सकता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो बंध का अंतर काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। सर्वप्रथम उत्कृष्ट का प्रकरण है, इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ की अपेक्षा सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, क्योंकि हमने देखा था कोई जीव उत्कृष्ट बंध करता है बाद में अनुत्कृष्ट करने लगता है तो एक समय में लौटकर वो उत्कृष्ट नहीं कर सकता, अंतर मुहूर्त चला जाएगा, बाद में ही वो अर्लीस्ट फिर दोबारा उत्कृष्ट करेगा। तो उसका अंतर कितना हुआ, एक अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि इसके लिए स्वामित्व को देखना है हमको। उत्कृष्ट बंध कौन करता है तो संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त है। जो ओघ की अपेक्षा हम देख रहे हैं ऐसा जो एक इंद्रिय में चला जाए तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक उसने अनुत्कृष्ट का ही बंध किया है, तो वो क्या हुआ, उसका अंतर हुआ। वापस जब वो पंचेंद्रिय में आएगा, वो संकलेश उत्कृष्ट हो गए, वो उत्कृष्ट बंध करेगा तब उसका अंतर समाप्त होगा। तो वो कितना है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि अनुत्कृष्ट करते करते उसने एक समय के लिए उत्कृष्ट किया और वापस अनुत्कृष्ट करने लगा। जो उत्कृष्ट का काल था वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहला गया। और उत्कृष्ट अंतर कितना है तो अंतर्मुहूर्त, क्योंकि लगातार उत्कृष्ट कितना समय तक कर सकता है तो अंतर्मुहूर्त, उसके उससे अधिक ज्यादा नहीं। अब आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय कम पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं, आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना हो सकता है,
33 साल।
अब वो देव का दोबारा करेगा कि नहीं, देव का 33 सागर का दोबारा
नहीं
करेगा, नरक का करेगा, हम देखते हैं। तो किसी जीव ने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया, कब किया, 1/3 पूर्व कोटि के पहले समय में किया, लगातार अंतर मुहूर्त उसने, इसके अनुसार हम सोच रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात है ना, तो पूर्व कोटि के त्रिभाग में से 1/3 पूर्व कोटि बाकी थी तो उसने 33 सागर की आयु बांधी, या उत्कृष्ट स्थिति बंध किया उसने। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर, अंतर की बात है, एक समय कम पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष है,
मतलब इसकी 10,000 वर्ष में ले गया
है, 21,000 साल
उसकी आयु को 10,000 वर्ष में ले जाओ,
10,000 वर्ष के ऑपरेशन होता है,
इतना कम कर दिया उसने,
कर दिया क्यों, मतलब ये अच्छा वित्तीय दृष्टि क्या करते थे, शनि राजा नहीं करता,
समय दृष्टि की जगह ने आयु वहाँ पर 84,000 यानी 84,000 वर्ष नरक में, उससे कम नहीं कर सकते,
मिथ्या दृष्टि है,
हाँ, तो फिर वो 10,000 वर्ष यानी ये 1/3 पूर्व कोटि एक समय में उसने उत्कृष्ट किया, फिर यहाँ पर क्या किया उसने, बांधी थी उत्कृष्ट आयु पर 10,000 वर्ष के मान लेते हम, नेक्स्ट में नेक्स्ट अनुत्कृष्ट हुआ ना, फिर बाद
में
इसमें उसका घटाया उसने, ड्यूरिंग दिस काल उसने वो घटाकर 10,000 वर्ष की हो गई, अब ये 10,000 वर्ष की आयु भोगी उसने,
आयु स्थिति का उत्कृष्ट मतलब 33 साल का पड़ेगा,
अभी सुनो ना अभी अंत तक कहाँ आए,
ये उसने बाद में किया, आयु का प्रश्न निकल गया फिर उसे कम कर
दिया, हाँ वही तो आयु का जो घटना होता है
बाद में होगा,
जिसको हमने क्या किया घाता इसके जिसको हम नाम देंगे, वो बांधने के बाद हुई उसका कोई मायना नहीं रखता है, तो इसने 1/3 पूर्व कोटि यहाँ बिताया काल, 10,000 वर्ष बीत गए, वहाँ बंद किया उसको नहीं गिनना, वो उत्कृष्ट नहीं था, वो तो पूर्व कोटि किया से 33 सागर तो नहीं किया, तो यहाँ फिर पूर्व कोटि का बंद करके आए, अभी हम उल्टा गिन रहे, यहाँ से शुरू हुआ, अब यहाँ से पूर्व कोटि शुरू हुई उसकी, अब इसे 2/3 बीत जाने पर उसने यहाँ आयु का बंद किया, यहाँ भी उत्कृष्ट किया, वो 33 सागर का किया, तो ये 1/3 पूर्व कोटि और ये 2/3 पूर्व कोटि मिलकर पूर्व कोटि हुई, एक समय क्योंकि उत्कृष्ट के बाद शुरू हुआ और उत्कृष्ट के पहले समाप्त हुआ, एक समय इसमें से घटाना पड़ेगा,
आयु कर्म से उत्कृष्ट स्थिति बच तो वो तो 33 साल में बता दी,
उसी की तो बात कर रहे हैं,
वो तो आपने एक पूर्व कोटि प्लस 10,000 वर्ष उसका एक 33 सागर का जो बचत किया,
33 सागर का 10,000 किया ना उसने घटाकर, उसी की तो बात चल रही है,
33 सागर का अच्छा भगत की अपेक्षा,
अरे देव की तो दोबारा करेगा ही ना, 33 सागर बांधे तो वो तो मोक्ष चला जाएगा, मैंने पहले ही ये प्रश्न पूछा था, एक अंतर्घटित करना है, अंतर है एक समय के लिए उसने 1/3 पूर्व कोटि में से एक समय तो उत्कृष्ट करने में बीता है, यहाँ 1/3 पूर्व कोटि में से एक समय कम हुआ, अब यहाँ 2/3 पूर्व कोटि पूरे है और बाद में उसने यहाँ उत्कृष्ट बंद किया, तो ये पूरे 2/3 कोटि ये 1/3 पूर्व कोटि में एक समय कम, तो दोनों मिलकर एक समय कम पूर्व कोटि हो गए और 10,000 वर्ष जो यहाँ बीता है वो,
ये नरक की अपेक्षा है, एक बार 33 बन गया तो कभी हो नहीं सकता,
वो 33 सागर का बांध के भवनात्री की थोड़ी करेगा, भवनात्री की क्यों मनुष्य बांधता है ना, सातवें नरक में जो जाते हैं वो बांध सकते हैं, उसमें
सागर
बांधने
पहले पैसा है ना,
हाँ 33 सागर बांधने वाले को पहला ही सहनन, क्योंकि वही तो सहनन पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा, मरकर कौन जाता है, तो उत्तम सहनन वाला तो पहले सहनन वाला पहले नरक से सातवें तक जाता है ना, पहले में नहीं जाता है कहाँ है,
तो ये जिंद है,
नहीं नहीं आपका प्रश्न फिर पूछना, बिल्कुल क्योंकि उसके बिना 33 सागर के बंधेगा ही नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है जो 33 सागर की आयु बांधने वाला उत्तम सहनन वाला ही चाहिए क्या, तो नीचे के सहनन वाले ने बांध दिया और फिर उसने 10,000 वर्ष बनाई, तो कहते ऐसा नहीं, उत्तम सहनन के बिना वैसा उत्कृष्ट संकलेश और वैसा बंध होगा ही नहीं उसके,
तो
वो तो सर्वत्र हम बहुत बार कहे हैं, वो तो पहले नरक से सातवें तो कहीं भी जा सकते हैं, परंतु सातवें में जाने वाले
के उसके उत्तम शयन था, अगर उसका घटाश नहीं होता तो उसको सातवें में उत्तम शयन से जाना पड़ता।
सनन से नहीं, सनन को छोड़कर
वहाँ
कहाँ सनन है, वैकरिक शरीर है, उसमें सनन है ही नहीं। अरे समय दृष्टि होके कैसे होगा, समय दृष्टि की मिनिमम आयु कितनी होगी गाता विश्व की भी 84,000 वर्ष, जो सैनिक ने की थी, जो सैनिक ने की थी 84,000 वर्ष,
वो तो नरक की बात है,
नरक की बात है, नरकायु नहीं बांधी, परंतु नरकायु जो बंधी थी पहले मिथ्या तो अवस्था में, इसको घटाया कि नहीं घटाया, श्रेणी ने क्या किया,
जो सम्यक तो प्राप्त किया पीछे उसका
घटी, हाँ घटा इसको हुआ, वो कितना हुआ, उससे कम क्यों नहीं हुआ, हाँ वही कह रहे हम, सम्यक दृष्टि के लिए वो मिनिमम आयु है वहाँ की नरक की, यानी वो 10,000 वर्ष की आयु पूरी करके आएगा समय दृष्टि, ऐसा नहीं होगा, समय तो के साथ गया है,
तो जो इतना उत्कृष्ट परिणाम वाला ने गाड़ी घटाई तो भी 10,000 वर्ष की, तो अभी ये विद्या दृष्टि भी 10,000 वर्ष
कर दी, कर दी,
ऐसा हो सकता है,
बड़ा आदमी करेगा गलती उसकी सजा ज्यादा होती ना, समय दृष्टि हो के
तो क्या हुआ,
आपको एडवाइस करते हैं मिथ्या दृष्टि लो,
नया नहीं, दूसरी दूसरी बनती तो पहले वाले भोगता, वो दूसरी बार कम बांधेंगे तो जो जितनी बंदी पड़ी है वो उतनी रहती है, घाता है इसको, उसको कहते हैं उन सभी निषेकों का घात करके वो परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, यानी पहले अगर आपका कहना है पहले बहुत आयु बांधी थी, पहली बार ये ज्यादा यहाँ तक बांधी और दूसरी बार यहाँ तक ही बांधी, तो ये इतनी भोगेगा वो, हाँ
प्रदेश
अभी उन्होंने कुछ देखो देखो आगे, हाँ ये जो हम आयु की बात कहाँ गए, 59 पर थे ना, हाँ आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन अंतर एक समय कम पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन अंतर अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है, किसका, आयु कर्म का, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध जगन अंतर अंतर्मुहूर्त, क्योंकि दोबारा उसने अंतर्मूर्त में उसका त्रिभाग अंतर्मूर्त में आया, हाँ और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है, अनुत्कृष्ट का ही गए, कोई 33 सागर की आयु बांधी है, क्या क्या अजगन्य की उत्कृष्ट कब थी, पहले समय में जब 33 सागर की बांधी तो पहले समय में उत्कृष्ट थी, बाद में अनुत्कृष्ट ही थी, तो उसने साधिक 33 सागर बताओ कैसे हुआ,
तो यहाँ वन थर्ड माइनस वन 33 सागर
हाँ, तो छह महीने शेष है तो आयु बांधी, यहाँ बाद में बांधा हो ना, लास्ट में बांधा, तो भी उसने अनुत्कृष्ट ही बांधी ना, पूर्व कोटि की बांधी तो भी
अनुत्कृष्ट,
अरे बाबा उत्कृष्ट कब किया, पहले समय में किया,
अच्छा
बाद में उसका अनुत्कृष्ट होता रहा, तो पहले समय में उत्कृष्ट करके वो अनुत्कृष्ट करने लगा। देखो यहाँ उस वंथर पूर्व कोटि में उसने उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट करता रहा। अब उसके बाद यहाँ तैतीस सागर में गया, लौटते समय उसने अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का बंद किया। वो कैसा, वो तो तैतीस सागर है ही नहीं है, तो वो जो कुछ होगा जितना कुछ बांधेगा वो अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा। तो अनुत्कृष्ट का अंतर कितना हुआ, यहाँ पहले समय में उत्कृष्ट किया था, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट किया था, तो यहाँ से लेकर ये तैतीस सागर में कुछ अधिक में पूर्व कोटि का त्रिभाग करीबन इतना दे सकते। साधिक तैतीस सागर है ना, अनिवंथर पूर्व कोटि दूसरे समय में अनुत्कृष्ट किया। और तैतीस सागर के अंत में फिर आयु बांधी अंतर्मूर्त पहले। हाँ, वो कितनी बांधती उससे हमने कुछ मतलब नहीं। अब इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध होने के बाद पुनः उत्कृष्ट स्थितिबंध कम से कम अंतर्मूर्त काल के बाद होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा। तथा जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध करके एकेंद्रिय और विकलेत्रय पर्याय में आवली के असंख्यात भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण कर, जब हम असंख्यात असंख्यात कहते हैं तो उस असंख्यात का प्रमाण कितना है, कितने पुद्गल परिवर्तन, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ऐसे कितने करेंगे असंख्यात बार। कौन सा असंख्यात, आवली का असंख्यात भाग वाला असंख्यात। पुनः संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होकर उक्त कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध करता है, उसके उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर काल उपलब्ध होता है। इसी से यहाँ उक्त कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल अर्थात असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय बराबर और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से, यहाँ इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का। उत्कृष्ट का एक समय अंतर नहीं हो सकता, अनुत्कृष्ट का एक समय हो सकता है, क्योंकि एक समय के लिए उत्कृष्ट का बंध किया। ओघ से आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध पूर्व कोटि की आयु वाला तिर्यंच और मनुष्य अपने प्रथम त्रिभाग काल के शेष रहने पर करता है। यदि ऐसा जो उत्कृष्ट स्थितिबंध करके और उसको अपकर्षण द्वारा 10,000 वर्ष प्रमाण करके प्रथम नरक में या भवनवासी और व्यंतरों में उत्पन्न होकर, यानी यहाँ ऐसा लिया उन्होंने, मनुष्य ने तैतीस सागर की बांधी और 10,000 वर्ष की कर दी, या तीरेंच ने तैतीस सागर की और 10 दीपायन मुनि की होगी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो आयु बांधी है तो वो भावलिंगी मुनि थे और मिथ्या तो में चले गए, यानी वहां पर भी बताया है। हाँ, तैतीस सागर देव की बांध कर मिथ्या तो में गए, देव की बांध कर मिथ्यात्व हुए, मिथ्या दृष्टि हुए, और घाता इष्ट होकर 10,000 की हो गई। प्रथम नरक में या भवनवासी वंतरों में उत्पन्न होकर वहां क्रम से पूर्वकोटि प्रमाण आयु का बंध करके पुनः मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होकर पुनः प्रथम त्रिभाग में 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु का बंध करता है तो आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम पूर्वकोटि और 10,000 वर्ष प्रमाण उपलब्ध होता है। ये तो हमने नरक में देखा था, तो देव में भी संभव है, ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। यही कारण है कि इसका जघन्य अंतर उक्त प्रमाण कहा है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यह स्पष्ट ही है। अभी अनंत काल वो नरक के लिए ले लेना, क्योंकि 33 सागर की आयु बांधने वाला जो है वो तो नेक्स्ट भूमि में मोक्ष जाएगा, यानी वो अगर उतनी आयु बांधता है भोगता है तो की बात है। जो जीव अंतर्मूर्त के अंतर से आयु कर्म का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करता है उसके उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है। और जिस मनुष्य और तिर्यंच ने प्रथम त्रिभाग में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध किया तथा इसके बाद द्वितीयादि समयों में लिखा है ना द्वितीयादि समयों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध किया, अनंतर उत्कृष्ट स्थिति के साथ वह देव या नारकी हुआ, पुनः वहां उसने आयु के अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर पुनः आयु का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध किया तो उसके आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का साधिक 33 सागर उत्कृष्ट अंतर काल उपलब्ध होता है। हमने इसी सोचा था इसके लिए भी। यही कारण है यहाँ आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा। मैंने अंतर पूर्व कोटि बाकी थी तब उत्कृष्ट करके दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ, फिर अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट रहा, फिर आयु का बंध मिट गया तो उसका अंतर चालू हो गया, अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया। तो जब तक 33 सागर की आयु के अंत में जाकर अंतर्मूर्त बाकी था तब उसने फिर दोबारा आयु बांधी, वो भी अनुत्कृष्ट ही बांधी, तो ये उसका उतना अंतर सिद्ध हो गया। अब ये तो ओघ की अपेक्षा बात हुई, आदेश की अपेक्षा नारकियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। मंजू कुछ कम क्यों कहा? बोलो, नहीं मालूम। हाँ मंदा बहन कहना चाहते हैं। हाँ असंगी आएगा तो जघन्य करेगा कि उत्कृष्ट करेगा? यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही, जघन्य की नहीं। हाँ देखो, जब नारकी अपर्याप्त है तो वो उत्कृष्ट बंध नहीं कर सकता, पर्याप्त होने पर करेगा। तो पर्याप्त होने के लिए जो अंतर्मूर्त काल है वो पूरे 33 सागर में से माइनस कर दिया, तो उसने शुरू में पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट स्थितिबंध किया, फिर बाद में किया ही नहीं पूरे, और लास्ट में जाके मरण के समय कर दिया उसने, तो कुछ कम 33 सागर हो गया उत्कृष्ट का अंतर। पहले अंतर्मूर्त में जब तक अपर्याप्त था, अंत कोड़ा कोड़ी सागर बंद कर रहा था, जब जाके पर्याप्त होने के बाद उत्कृष्ट संकलेश हुए उसके, तो उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, फिर बीच में कभी नहीं किया, मान लेते एक समय के लिए किया क्योंकि एक समय के लिए उत्कृष्ट हो सकता है, फिर उसका अंतर प्रारंभ हुआ अंतिम समय में जाके किया, तो एक कुछ कम कर दिया उसका। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन अंतर एक समय
अंतिम समय में उत्कृष्ट बंध
करता है ना गुणित कर्मवशिक में हमने क्या लिखा
अंतिम समय वो निकल रहा है आपको
हाँ हाँ
नरक से निकलने वाला है
तो क्या हुआ वहाँ छोड़ने का मन नहीं करता होगा उसको
नहीं ऐसे कैसे ये तो नहीं मन तो सबका करता है ये बात करते हैं हर व्यक्ति धीरे जी मनुष्य हो रहा है जो अच्छी है
देखो देखो ये संकलेश परिणाम की बात है क्या देवों की संकलेश नहीं होता है
लेकिन तुम जाते हैं उनको तो उनकी बात सही है खराब दिन जा रहे हैं इसलिए
ये ऐसी बात नहीं है तो वो तो छूटने का शौक हो रहा है वहाँ
उनको तो पसंद आया कि संकलेश क्यों हो रहा है
ये समझ में नहीं आता बिना कुछ कारण के नहीं होता है तो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त जो उत्कृष्ट का काल है वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहेंगे आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ जब पहली बार छह महीने पहले मान लेते उसने आयु बांधी पूर्व कोटि की पहले समय में उत्कृष्ट बंधी द्वितीय आदि समय में अनुत्कृष्ट हुई दूसरी बार भी बंधेगा तो वो उत्कृष्ट नहीं होगी अनुत्कृष्ट होगी
हाँ एक ही बार
उत्कृष्ट
इसलिए मान लेते हैं मुझे ऐसे लगता है जब बार बार उन्होंने उत्कृष्ट आबादा कही थी उसका कारण यही होगा
टोटल नंबर ऑफ
नहीं एक बार बांधी उसने तो बाद में वो अनुत्कृष्ट बंधी
तो ये उत्कृष्ट भी बांधी ना वो पहला जो काल है बंधन काल देव नाट्य में छह महीने
तभी उसकी ही बात करे उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर नहीं करते क्या ये तो दोबारा वो उत्कृष्ट बांधता
तो ये जो पहली बार जो बांधता है ना देव नाट्य और गोमूर में छह महीने थे पहली बार वो कभी बांधता
नहीं एक उत्कृष्ट कब बांधेगा एक बार ही बांधेगा ऐसा कहते हैं उत्कृष्ट एक बार बांधी उसने कब बांधी उसकी बात नहीं एक बार बांधे
कौन सी उत्कृष्ट बांध सकता बांधेगा देख से यही
हुआ हाँ देखो आगे क्या देखते हम देखेंगे तो उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं कह दिया अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है ये अंतर्मूर्त यानी दो अपकर्षण काल के बीच वाला वह अनुत्कृष्ट ही होता रहा ना दूसरे में भी अनुत्कृष्ट और अंत में भी अनुत्कृष्ट डिस्टेंस कहाँ है वो काल है अंतर हम देखते हैं अंतर यानी जब बंध रुक गए उसको अंतर कहेंगे अब काल देख रहे नहीं समझे अंतर कब कहीं जब आयु का बंधन नहीं हो रहा है तो जघन्य अंतर अंतर मोड़ और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छह महीना छह महीने के आठ बार अपकर्ष कराओ तो लास्ट दो में अंतर जो अंतर्मुर्त हो जाएगा
लास्ट
जैसे छह महीने पहले फिर छह का त्रिभाग दो महीने ने साठ दिन उसका त्रिभाग बीस दिन उसका त्रिभाग सात दिन में कुछ काम अभी ऐसा करते जाओ आठ बार अंतर्मुर्त हो जाएगा आप करो अर्धच्छेद कहाँ है वो अंतर करना है अर्धच्छेद नहीं त्रिच्छेद करना है आप निकालो और कल बता दो ये जघन्य अंतर है तो अंत में लेना है उसको और उसका उत्कृष्ट अंतर बढ़ाना है तो अंतिम जो है वहां तक ले जाना इसी प्रकार सात पृथ्वियों में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि प्रत्येक पृथ्वी में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, कुछ कम इन्हें अपर्याप्त काल को माइनस कर देना। विशेषार्थ, सातों पृथ्वियों में सातों कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतर मूर्त के अंतर से या कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु के अंतर से हो सकता है। इसी से यहाँ सातों कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर सामान्य से कुछ कम 33 सागर तथा प्रत्येक पृथ्वी की अपेक्षा कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है, यानी अपर्याप्त अवस्था में अंत कोड़ा कोड़ी बंध है, इसलिए उत्कृष्ट बंध पर्याप्त होने पर करेगा, इसलिए वो घटाया। नारकियों की बात चली ना, अब आयु की बात। यहाँ आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का अवसर यदि आता है तो एक बार ही आता है। पहली बार ऐसे नहीं, एक बार लिखा, और वो भी जब बनती है तब पहले समय में। इसी से आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं कहा है, शेष कथन सुगम है। अब तीर्यंचों में सात कर्मों का अंतर ओह के समान है। कौन बताएगा ओह के समान? मंजूरी मैंने उत्कृष्ट का अंतर, उत्कृष्ट का जघन्य अंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल। एक ही दिन में चला गया, संधि में ही करेगा वो। यहाँ काय स्थिति तिर्यंचों की स्थिति कहेंगे हम, काय स्थिति तो नहीं, तिर्यंच की स्थिति, उस मार्गणा की स्थिति कहेंगे। वो लंबी है परंतु उसमें एक इंद्रिय में रहने का काल है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय में आया तो फिर दोबारा उत्कृष्ट किया उसने। तो उत्कृष्ट का अंतर कितना है तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जो हमने ओग में भी देखा था। ये तिर्यंचों में घटित होगा, अन्य किसी गति में होगा ही नहीं, क्योंकि किसी गति का इतना लंबा काल है ही नहीं। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं है, आप जब कोई बात आती है तो दूसरे उल्टे सोचते हैं। अभी देखो, हम विचार करेंगे, तिर्यंच जीव आयु उत्कृष्ट आयु बांधेंगे तो कौन सी बांधेंगे? 33 सागर की बात, तो 33 सागर की बांधे तो क्या होगा उसका? तीन इंच से 33 सागर का तो नहीं उत्कृष्ट बंध होगा देव का, तो देव में जाएगा क्या? तीन इंच देव में जाएगा, नरक में जाएगा। तो नरक की आयु बांधी है तो तीन इंच पर यह छूटेगी कि नहीं छूटेगी? एक ही बार बांधता है। और वैसे उत्कृष्ट बांध करो तो बाहर आएगा अन्य कुछ आयु बांध के, क्योंकि दोबारा तो बांधने का सवाल नहीं है, यानी दोबारा वो उत्कृष्ट ही बांधे वो भी नहीं हो सकता है। आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 3 पल्ले। देखो क्या कहना चाहते हैं, कौन सी आयु बांधती है उसकी बात कुछ नहीं है। अब कहते हैं आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर नहीं है तो आयु को उत्कृष्ट 33 सागर की बांधी उसने, पूर्व कोटि तिर्यंच में रहते हुए वो अंतर पूर्व कोटि के पहले समय में बांधी हम कहेंगे तो भी दोबारा उसका उत्कृष्ट का बंध नहीं होगा। ये बात उत्कृष्ट एक ही बार बनती वो उन्होंने बता दिया। अब कहते हैं कि अनुत्कृष्ट की बात करेंगे, किसी ने आयु बांधी और अनुत्कृष्ट का स्थिति बंध का अंतर किया, तो किति कब बांधी? तो असंक्षेपाधा काल पहले बांधी, मिनिमम अंतर हमें चाहिए। तो वहां का काल कितनी बांधी? तो अपर्याप्त की आयु बांधी, वो अंतर्मूल। और फिर दोबारा कब बांधी? तो उसका अंतर बाकी है तब बांधी। तो अंतर कितना हुआ? वो लब्धि अपर्याप्त का 2/3 प्लस ये असंक्षेपाधा मिलकर जितना हो उतना अंतर मुहूर्त होगा। ख्याल में है ना बात? यहाँ भी उसने अनुत्कृष्ट बांध रही असंक्षेपाधा
प्लस 2/3 आउट कर दिया।
हाँ,
असंक्षेप 1/3 से कम है,
बहुत कम है। जो अवली का असंख्यात भाग भी कहते हैं उसको, अभी उसमें भी दो मत।
दोनों का प्रयोग तीन में अवली कुछ टाइम बाद तो वो कम हो जाएगा।
क्या क्या क्या? तिर्यंच में लब्धि अपर्याप्त तक तो अनुत्कृष्ट ही बांधेंगे, उत्कृष्ट बांध ही नहीं सकते।
मैं क्या पूछ रहा हूँ कि दोनों का जो आयोजन थी वो दोनों में लब्धि अपर्याप्त की तरह।
हाँ, कैसे भी करो ना, असंक्षेपाधा में जो कोई बांध सकते हैं उसको पर्याप्त भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, असंक्षेपाधा पर्याप्त में होता है कि नहीं होता है? तो पहला भाव उसका लब्धि अपर्याप्त का था कि नहीं था, उससे कुछ मतलब नहीं। दूसरा जो लेना है वो छोटे में छोटी आयु वाला लेना, जो अर्लीएस्ट आयु का बंद कर रहा है, क्योंकि हमें जघन्य अंतर देखना है। आयु का बंद किया, कौन सा किया? अनुत्कृष्ट किया। तिर्यंचों के लिए उत्कृष्ट कौन सा था? 33 अगर का। बाकी जो कुछ करेगा वो अनुत्कृष्ट है। तो उसने असंक्षेप बाधा काल बाकी था तब उसने लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधी। असंक्षेप बाधा काल बीत गया, वहां आयु का बंधन नहीं हो रहा था, यानी जो कुछ बांधी वो उन्हें अनुत्कृष्ट ही बांधी। फिर लब्धि अपर्याप्त का भाव शुरू हुआ, 2/3 बीत गया और आयु बांधी, क्योंकि अर्लीएस्ट बांधना है, वहां हमें अंतर कम से कम लेना है। तो वो 2/3 और ये पहला असंक्षेप आता। ख्याल में ये बात? अरे अरे, हरे का असंक्षेप आता अलग नहीं होता।
उसका तो काल कितना है लब्धि अपर्याप्त?
अरे उसमें क्या है, असंक्षेप आता ही असंक्षेप आता, मिनिमम मोस्ट पार वो सबके लिए समान होगा। अब ये जो अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर, तिर्यंच जीव किसी ने उत्कृष्ट अंतर है, यानी उत्कृष्ट अंतर फिर दोबारा आयु का बंधन नहीं किया, तो वो लंबी आयु लेना है। तो 3 पल्ले वाले लेना, 3 पल्ले में कब बांधे? तो लास्ट में, अंतिम अपकर्ष काल में जो कुछ है तब बांधे, यानी वो अंतर्मूर्त कम करेंगे उसका, तो 3 पल्ले वाले। उसके पहले कब बांधी थी? तो 1/3 पूर्वकोटी, 1/3 पूर्वकोटी पहले बांधी। तो ये वहां भी अनुत्कृष्ट बांधी नहीं, उसका अंतर शुरू होने आयु का बंध समाप्त तो हुआ, तो उसका अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हुआ,
3 पल्ले में गया,
तो साधिक 3 पल्ले, यानी 1/3 पूर्वकोटी। अभी उसमें अंतर्मूर्त माइनस करना से लेकर 3 पल्ले के अंतिम अंतर्मूर्त, अंतिम कोई अंतर्मूर्त जो अभी उसमें वो जो कुछ अंतिम उसका आकर्षण काल ले लेगा। ये हो गया। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मुख जो हम हमेशा देखते आए, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व है, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच में जो रहने का काल है, शुरू में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपने अपने जो कुछ मार्गण है उसमें आया है, पर्याप्त हुआ है, उत्कृष्ट स्थिति बंद किया और फिर जाके उस मार्गणा के अंत में कर दिया। तो जैसे हम हमेशा वो गिनते हैं पूर्व कोटि पृथक, अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का अंतर ओक के समान है, एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त, जितने काल में वो उत्कृष्ट का बंध करता है वह अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाए। आयु कर्म के पंचेंद्रिय तिरंचों की बात चल रही है। आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर सामान्य तिरंचों के समान है, यानी उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर देखना है तो कम से कम कितना होगा अंतर्मुहूर्त, जैसे अंतिम जो उसके जो त्रिभा त्रिभा करते हुए आठ अपकर्ष काल होते रहे तो इन बिटवीन दो आयु बंध का अंतर्मुहूर्त घटित होगा, और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, क्योंकि ये जो पंचेंद्रिय त्रिक है तो वो तीन पल्ले की आयु बांध सकते हैं, तो अंतर पूर्व कोटि जब बाकी थी तभी बांधी, तीन पल्ले के अंत में बांधे तो साधिक तीन पल्ले हुआ। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त पुण्य, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। किसके लिए उत्कृष्ट का अंतर आप कह रहे हैं ना, उत्कृष्ट कितनी बांधेंगे, 33 सागर सात कर्मों के, फिर से दोबारा एक मिनट आपका प्रश्न है, सात कर्मों के
कर सकते हैं,
उत्कृष्ट अंतर की बात कर रहे हैं।
किसी ने उन्होंने वकील पहले नहीं लिया ना, पूर्व कोटि तक को लिया,
तो भोपाल में बंधन कितना होता है, अंतकोड़ा
का
तो उत्कृष्ट होता है, देव में देख लेते हैं उत्कृष्ट हो सकता है।
आप क्या कहना चाहते हैं,
वो भी कह रहे थे और संग
भूमि में तो उत्कृष्ट बंध होता ही नहीं उनके, हाँ तो ये उत्कृष्ट बंध करने वाला संकलेश परिणाम वाला लिया हमने, उसका अंतर हम देख रहे हैं, तो अंतर मूर्त में वापस करेगा या उस पर्याय में रहने का जो काल है उसके अंत में करेगा, यानी हमने वो जो पूर्व कोटि प्रत्युक्त प्लस तीन पल्ले लिया वो नहीं लेना है, पूरे 96 पूर्व कोटि लेना,
अपन इसी बात कर रहे हैं जो अंतर पूर्व कोटि प्रत्युक्त लिखा है,
हाँ
जनरली हम
47 उसमें
तीन पल्ले
प्लस तीन पल्ले नहीं लिया,
पल्ले लिया तो
हाँ। यहाँ भोग भूमि का नहीं लिया, क्योंकि वहां अंतकोड़ा कोई बंद होता है, हमेशा पूर्व कोटि पृथक तो प्लस तीन पल्ले कहते हैं, यहाँ तीन पल्ले नहीं कहा, तो जितनी इतनी छानबे पूर्व कोटि वगैरह वगैरह वो उसमें आ जाएगा। बरोबर, पंचेंद्रिय तिरंच अपर्याप्तकों में देख रहे थे, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है, एक बार उत्कृष्ट करने के बाद एक समय में वापस उत्कृष्ट नहीं हुआ, अंतर्मुहूर्त तो अंतर रहेगा ही रहेगा, जघन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त, क्यों लब्धि अपर्याप्त की काय स्थिति अंतर्मुहूर्त है, लगातार वो होता रहे तो भी। अब अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय के लिए उत्कृष्ट किया तो अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त तक ही वो उत्कृष्ट रह सकता है, उत्कृष्ट रह सकता है, उत्कृष्ट में रहने का अंतर्मुहूर्त लेना है। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम अंतर्मुहूर्त, आयु बंध कोई भी कर सकता है, अच्छा अच्छा क्या कहना चाहते हैं, उसी मार्गणा में रहते हुए की बात है।
ये लगते पर्याप्त तो उत्कृष्ट आयु कितनी एक करोड़ प्रति की बात नहीं हाँ बताइए
हाँ
और पीछे तक भी आपसे मदद हो
गया। देखो अनुत्कृष्ट स्थिति बंधक अनुत्कृष्ट देख रहे कि उत्कृष्ट आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंधक का जघन्य अंतर एक समय कम अंतर मुक्त उत्कृष्ट स्थिति बांधी एक अंतर मुहूर्त में कदलीघात से मरा तो मरा तो वहाँ आयु बांधी उसने कितनी बांधी वही पूर्व कोटि की बांधी। परंतु वह आयु बांधी तब वो कहाँ रहा अपर्याप्त
तो पर्याप्त के साथ
तो पर्याप्त में चला गया अपनी मार्गणा तो चेंज हो गई ना। पंचेनी तीर कपजत सत्तनम कमणम हो गया आयु कस जहन अंतो मुक्त नहीं ऐसा करना पड़ेगा उत्कृष्ट स्थिति बंद कराना है पंचेन्द्र तीर्यन चपर्याप्त को में और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूल क्योंकि वो अपर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर मूर्त है इसलिए उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त लिया। परंतु उसके मार्ग नहीं बदल जाएगी ना दूसरी बार फिर वो अपर्याप्त में जन्मा दोनों बार उत्कृष्ट बांधी
हो सकता है एक बार पर्याप्त के रूप में उसका अपकर्षण करेगा
अपकर्षण उसका घात होगा तो भी घात होगा तो पर्याप्त का अपर्याप्त हुआ अच्छा तो दूसरी बार अपर्याप्त की आएगी उसमें बात है उसको होकर अपर्याप्त की हो गई अपर्याप्त नाम कर्म बांधा दूसरी बार फिर अपर्याप्त में गया
पर्याप्त नाम कर्म के साथ बांधा और दूसरी बार अपर्याप्त इसे बताया
यानी उत्पन्न हुआ अपर्याप्त में ही क्योंकि तिरियन चाहिए तो बदली नहीं उसकी अपर्याप्त हो गया ऐसे ही मानना पड़ेगा तो अपर्याप्त का वो जो 1/3 है तब फिर उसने उत्कृष्ट आयु बांधी यही हो सकता है ना पहले पर्याप्त की उत्कृष्ट आयु बांधी थी 1 करोड़ पूर्व की फिर दूसरा उसका आयु बंध का अवसर आया दूसरा त्रिभाग तो उसने अपर्याप्त की बांधी या उसका घात होकर उसकी
घात
पर अपर्याप्त नाम कर्म बांधा उसने तभी
घात
घात करनी पड़ेगी मन उसको अपर्याप्त वाली हो गई उसकी
गाता है उसने इतनी कर ली को अपर्याप्त की रेंज में
आएगा और घात घात करते समय उसने अपर्याप्त नाम कर्म बांधा
और वो अपर्याप्त फिर पर्याप्त क्या बांध लिया
हाँ दूसरे भाव में
बात अपने मेरे लिए नहीं है कि बोले
दूसरे भाव में
पर्याप्त की बांध की अपर्याप्त की
पहली बार ये देख रहे हैं
और लग नहीं किया
बांध सकता है उसने एक पूर्वकोटि की आयु बांधी फिर उसने घात किया घात करने के लिए उत्कर्ष की जरूरत नहीं है अपकर्ष में करेगा तो कम आयु बांधेगा पहली तो रहेगी वैसे वो घात करने का काम
कर दिया
बस उसने घात कर दिया इतना ही कहाँ पर साठ पेज
ऐसा जी उत्कृष्ट जीवन करके और उसके अपकर्षण करके 10,000
अपकर्षण द्वारा नहीं वो एक घात द्वारा कहना चाहिए था केवल अपकर्षण होता है तो थोड़े ही परमाणु नीचे आते हैं
मैंने
अपकर्षण द्वारा इन्हें गाता यूज को कहना चाहिए
स्थिति का अपकर्षण
हाँ स्थिति का
अपकर्षण होगी ना पूरी स्थिति का घात होता है तो गाता यूज की कहना
चाहिए अपकर्षण में क्या होता है थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते हैं वहाँ भी अपकर्षण होता है किंतु घात होके पूरा नीचे आता है यानी अपकर्षण अपकर्षण में भी भेद होगा सभी का सभी निषेक घात होकर नीचे के निषेकों में आ मिलते परमाणु छोड़ के चले जाएंगे नहीं क्योंकि बद्धमान आयु है उसका उदय तो नहीं है छूटने के सवाल नहीं है क्योंकि तिर्यंचायु की तिर्यंचायु रही ऐसा हम कह सकते जैसे हमने अभी तो सर्वार सिद्धि वाले को भवनत्रिक में ले गए भवनवासी अंतर में कैसे कैसे विचित्रता है हो गए समय अभी दो लाइन ये विशेषात पड़ेगी अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का आयु के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख होता है ये उत्कृष्ट अंतर तो काय स्थिति लेना जघन्य अंतर में एक ही भाव के दो अपकर्ष काल के बीच का काल लेना इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्त कों के जानना चाहिए मनुष्य त्रिक में पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के समान भंग है उत्कृष्ट की बात है ना इसलिए विशेषण पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की काय स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण होने से इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त उपलब्ध हो जाता है यही रुकेंगे अभी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लुकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा